मैं एक बार इनाया से बात कर लूं, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अनीता जी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और फिर से फोन उठाने लगी, पर मानव ने उन्हें रोक दिया। आई, अभी वो रेस्ट कर रही है, तू कॉल करेगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। वैसे भी हमें नित्या के घर के लिए निकलना है, वरना वहां पहुंचने में देर हो जाएगी, इसीलिए अभी हम नित्या के घर चलते हैं, वहां से आएंगे, उसके बाद तू इनाया से बात कर लियो, मैं भी करूंगा, क्योंकि अभी तो मेरी उससे बात ही नहीं हो पाई। अनीता जी का दिल नहीं मान रहा था, उन्हें नाया की चिंता थी, लेकिन मानव के समझाने पर वो मान गई। दोनों बातें कर ही रहे थे कि डोरबेल बजी और दोनों की निगाहें एक दूसरे की तरफ घूम गईं। आंखों में एक सा सवाल था, इस वक्त उनके घर कौन आया है? मैं जाकर देखता हूँ, मानव उठकर चला गया। गेट खोला तो सामने एक 19-20 साल का लड़का खड़ा था। आप कौन हैं, यहाँ किससे मिलने आए हैं? मानव ने गहरी निगाहों से देखते हुए सवाल किया, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैं कायरव साहब के वहां काम करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। आप अपनी माताजी के साथ आ जाइए, गाड़ी सामने ही खड़ी है। उस लड़के का जवाब सुनकर मानव के मन में कई सवाल उठने लगे। उसने कन्फ्यूज निगाहों से उसे देखा। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं कुछ समझा नहीं। सर ने आपके लिए गाड़ी भेजी है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं आपको सेफली नित्या मैडम के घर छोड़ूं और वहां से लेकर आऊं, उस लड़के ने खुलकर बताया। अब जाकर मानव को पूरी बात समझ आई, उसे उसके सभी सवालों के जवाब भी मिल गए। मतलब जीजू नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने हमारे लिए गाड़ी भेजी है ताकि हमें कोई परेशानी ना हो और वो हमारी सेफ्टी का ख्याल रख सके। मानव ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए सर हिलाया। आप रुकिए, हम अभी आते हैं। मानव उसे वहीं रुकने का बोलकर अंदर आ गया, जहां अनीता जी बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। मनु कौन था? ड्राइवर है, जीजू ने हमारे लिए गाड़ी भेजी है। अनीता जी पहले चौंकी, फिर उनके होठों पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। कुछ देर बाद दोनों सब सामान लेकर बाहर पहुंचे तो ड्राइवर भी उनकी मदद करने लगा। शगुन के सामान को उसने ठीक से गाड़ी में रखा। मानव आगे ड्राइवर के साथ बैठा, वहीं अनीता जी पीछे की सीट पर बैठी थी। शेरगिल हाउस में आज काफी चहल पहल लग रही थी। दादाजी खुद सारी अरेंजमेंट्स देख रहे थे। नौकर उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए यहां से वहां दौड़ते हुए काम में लगे थे। मिस्टर शेरगिल सोफे पर इत्मीनान से बैठे बस खामोशी से सब देख रहे थे। दादाजी एक एक चीज अपनी देखरेख में अपने हिसाब से करवा रहे थे। डैड, आप क्यों बेवजह इतना परेशान हो रहे हैं? सब हो गया है, बाकी ये लोग खुद संभाल लेंगे। सालों से यहाँ काम करते हैं, सब जानते हैं। आपको इतनी छोटी छोटी बात के लिए इनके पीछे पड़कर अपना बीपी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आप आराम से बैठिए। दादाजी अभी अभी एक सर्वेंट को डांटकर फ्री हुए थे। मिस्टर शेरगिल की बात सुनकर तुरंत उनके तरफ पलटे और तुनकते हुए बोले, ऐसे कैसे बैठ जाऊं? मेरी पोती को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, मैं उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छूटने दूंगा। डैड, आपकी पोती को देखने लड़के वाले नहीं आ रहे, वो पहले ही नित्या को देख चुके हैं, उसे बहुत अच्छे से जानते भी हैं। लेकिन इस घर का दामाद पहली बार घर आ रहा है, उसके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मानव अभी तक इस घर का दामाद बना नहीं है, वो इससे पहले भी कई बार यहाँ आ चुका है, उसके लिए आपको इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने मानव को यहाँ सिर्फ बात करने के लिए बुलाया है। मिस्टर शेरगिल का जवाब सुनकर दादाजी की भौहें तन गईं। विधान, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मुझे नित्या के लिए मानव पसंद है, उस घर में वो खुश रहेगी और मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं अपने जीते जी अपनी पोती को उसके पति के घर में सुखी जीवन जीते देखना चाहता हूँ। नित्या मानव को चाहती है और मानव भी उससे उतना ही प्यार करता है। नित्या की खुशी मानव के साथ है और आज वो तेरे बुलाने पर अपनी माँ के साथ यहाँ आ रहा है। मैं आज नित्या और मानव के रिश्ते की बात मानव की माँ से करने वाला हूँ। मैंने भी उसे इसी सिलसिले में बात करने के लिए घर बुलाया है। मैं भी चाहता हूँ कि अब नित्या की उससे शादी हो जाए, लेकिन आज ना उनकी एंगेजमेंट है और ना ही शादी, फिर इन तैयारियों का क्या मतलब हुआ? मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा। दादाजी कुछ ज्यादा ही सीरियस नजर आ रहे थे। मिस्टर शेरगिल की बात सुनकर उनके चेहरे पर सुकून उतर आया। हमारी इकलौती पोती के रिश्ते की बात करने लड़के वाले हमारे घर आ रहे हैं, हम उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना चाहते। जब नित्या उनके घर में थी तो उन्होंने उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, हम भी उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर शेरगिल शायद अब भी उनकी बात के समर्थन में नहीं थे। उन्होंने सर हिलाया और नजर सीढ़ी की तरफ घुमाते हुए बोले, आपकी पोती खुद कहाँ है, इसकी कोई खबर है आपको? अपने कमरे में तैयार हो रही है, आज उसके लिए इतना खास दिन है, सुबह से खुशी से चहकती घूम रही है। नित्या के जिक्र से ही दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मिस्टर शेरगिल को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया, दादाजी के शब्द उनके कानों तक पहुंचे ही नहीं, वो बस एक ही दिशा में देखे जा रहे थे। चेहरे पर अम्यूजमेंट थी और आंखों में हैरानी।
दादाजी को जब उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने इनकी नजरों का पीछा किया और उनकी निगाहें भी सीढ़ियों पर ठहर गईं, जहां से नित्या चली आ रही थी। दादू, मैं कैसी लग रही हूँ? नित्या दादाजी के सामने आकर खड़ी हो गई, होठों पर मीठी सी मुस्कान बिखेरे अपनी बड़ी बड़ी गोल चमकती आंखों से उन्हें देखने लगी। पेस्टल पिंक सिंपल बॉर्डर वाली नेट साड़ी, जिस पर ज्यादा काम नहीं था, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और नित्या के मखमली बदन पर सचकर जैसे उसकी खूबसूरती पर चार चांद लग गए थे। वी नेक ब्लाउज, गले में पेंडेंट, कानों में झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी और गुलाबी रंग में रंगे सॉफ्ट होठ, बाएं हाथ में बैंगल्स, लाइट मेकअप ने उसकी खूबसूरती को निखार दिया था। इंडियन ट्रेडिशनल अटायर में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि दादाजी और मिस्टर शेरकिल दोनों ही हैरान थे। दादू, बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? नित्या में बच्चों जैसे गालों को फुला लिया। अब उसकी खुशी और एक्साइटमेंट मायूसी में बदल गई। वो सर झुकाकर खुद को देखने लगी। दादाजी मंत्रमुग्ध से उसे देखने लगे थे। अब जाकर होश में लौटे और उनके होठों पर मुस्कान के साथ आंखों में नमी भी उतर आई। बहुत सोनी लग रही हो आज तो, तुम्हें देखकर हमें नीरजा की याद आ गई। नीरजा जी के जिक्र से मिस्टर शेरगिल के एक्सप्रेशंस बदल गए। नित्या भी थोड़ी इमोशनल हो गई, लेकिन उसने अपनी आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया। इसका मतलब मैं मम्मा जैसी लग रही हूँ ना? नित्या चहकते हुए बोली। दादाजी ने सर हिलाया और उसके सर पर अपना स्नेह भरा हाथ रख दिया। वाहिगुरु तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखें। नित्या उनके सीने से लग गई। कुछ देर बाद वो दादू से अलग हुई और मिस्टर शेरगिल के पास पहुंच गई। डैड, आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना बिल्कुल क्यूट सी डॉल जैसी, जो बचपन में आपने मुझे लाकर दी थी? नित्या की आवाज की खनक उसकी खुशी जाहिर कर रही थी, जो दादाजी के साथ साथ मिस्टर शेरगिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आई थी। नहीं, आज तुम उस डॉल से भी ज्यादा खूबसूरत और बहुत प्यारी लग रही हो। मिस्टर शेरगिल ने प्यार से उसके गाल को छुआ, फिर उसकी साड़ी को देखते हुए सवाल किया, तुमने साड़ी पहनना कहाँ से सीखा?
आई ने सिखाया। मैं आज आई और मानव को सरप्राइज देने वाली हूँ, इसीलिए मैंने साड़ी पहनी है। नित्या खुशी से चहक रही थी। दादाजी और मिस्टर शेरगिल दोनों की नजरें उसी पर टिकी थीं। दोनों को उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची दिख रही थी, जो आज इतनी बड़ी हो गई थी कि उसके रिश्ते की बात शुरू हो गई थी। लेकिन इन सब में एक चीज जो अच्छी थी वो ये कि उसका नाम उस शख्स के साथ जुड़ने जा रहा था जिसे वो दिलो जान से चाहती थी और जिसके साथ उसकी सच्ची मुस्कुराहट जुड़ी थी। वो खुद कहाँ हैं जिसके लिए तुमने ये सरप्राइज प्लान किया है? तुम्हारे दादा सुबह से तैयारियों में लगे हैं, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मिस्टर शेरगिल ने घड़ी में टाइम देखते हुए सवाल किया। नित्या तपाक से बोली, वो आई के साथ घर से निकल गया है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थी, नित्या भी आ चुकी थी, लेकिन जिनका उन सबको इंतजार था वो अभी तक नहीं आए थे। आधे घंटे के बजाय एक घंटा बीत गया था। नित्या अब इंतजार करते करते थक गई थी। उसकी सारी खुशी और एक्साइटमेंट जैसे गायब हो गई थी। अब उसके चेहरे पर घबराहट थी और आंखों में डर। ना चाहते हुए भी उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो ऐसे ही मानव का वेट कर रही थी, लेकिन वो आया ही नहीं, और जब आया तब महीनों बीत गए थे।